एक गांव की मस्जिद के इमाम साहब बड़े दीनदार, खुदा तर्स और आलिम फाजिल थे। गांव का हर शख्स उनकी इज्जत करता था। वो हर दिल अजीज थे। उनकी इज्जत और एहतराम का ये आलम था कि उनकी किसी भी बात को कोई भी सुनने वाला रद्द नहीं करता था। गांव के तमाम बच्चे उनसे पढ़ने आते थे। चूंकि गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए इमाम साहब ही बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम भी देते थे। गोया वही तमाम तालीम और तदरीस का शोबा संभाले हुए थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त था। आसपास खेत ही खेत थे। गांव के तमाम मर्द हजरात उसी दरख्त की छाँव में बैठ जाया करते थे। अक्सर इमाम साहब भी वहां आकर बैठ जाते थे और गांव के तमाम लोग उनसे इस्लामी किस्से और कहानियां सुनते, जो कि इमाम साहब उनको सुनाते और उनकी दीनी इस्लाह करते। इमाम साहब नहायत सादा और नेक सीरत इंसान थे। इमाम साहब ही गांव वालों के तमाम दीनी काम संभालते थे। यही वजह थी कि जब भी कोई मर्द मरता तो इमाम साहब ही मैयत को गुसल देते और नमाज जनाजा पढ़ाते। अगर इस काम के लिए दूसरे गांव भी जाना पड़ता तो इमाम साहब इनकार नहीं करते थे। एक रात इशा की नमाज के बाद जब इमाम साहब घर पहुंचे तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जब इमाम साहब ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने तीन बारिश अफराद खड़े हैं, जिनके चेहरों पर बड़ी नूरानियत थी। इमाम साहब को देखते ही उनमें से एक, जो कि दरवाजे के करीब ही था, बड़े अदब से सलाम किया और कहा कि इमाम साहब, हम इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माजरत चाहते हैं। इमाम साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस पहले वाले शख्स ने कहा, हम करीब के गांव से आए हैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़वाना चाहता हूँ। वो आपको बहुत पसंद करते थे और उनकी वसीयत ये थी कि उनका जनाजा सिर्फ आपसे ही पढ़वाया जाए, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। हमने उनकी मैयत को गुस्ल दे दिया है और बाकी रसूमात भी पूरी कर ली गई हैं। गांव के अफराद भी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं। इमाम साहब ने उन सब को पहचानने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों को कभी देखा भी हो। आपके वालिद साहब का क्या नाम है और क्या वो मुझे जानते थे? क्या उनकी मुलाकात मुझसे हुई थी कभी? उस शख्स ने कहा कि मेरे वालिद ने आपको कई बार तिलावत करते हुए सुना था। आपकी तिलावत उनको बहुत पसंद आती थी। तब से ही वो आपको अजीज रखते हैं। इमाम साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो उनकी बातें अजीब थीं और दूसरा वो शख्स इमाम साहब को बड़ी गहरी नज़रों से बग़ैर पलके झपकाए बातें कर रहा था। उस शख्स के साथ आए हुए दो अफराद उसके पीछे हाथ बांधे गुलामों की तरह खड़े थे और इमाम साहब को मुसलसल देखे जा रहे थे, लेकिन उनके इस्लामी हुलिये की वजह से इमाम साहब मुतमईन थे। इमाम साहब अक्सर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लोगों के साथ जाया करते थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों से कहा कि ठीक है, अगर आपके वालिद की ये ख्वाहिश थी तो मैं आपके साथ चलता हूँ, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए कि मैं लिबास तब्दील कर लूं और वज़ू कर लूं। उन्होंने कहा, ठीक है इमाम साहब, आपको जितना वक्त दरकार है ले लीजिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर में इमाम साहब बाहर आए और उन तीनों के साथ टांगे में सवार हो गए। उनमें से एक टांगा चला रहा था। थोड़ी ही देर बाद टांगा गांव से बाहर आ गया। अंधेरे में कच्चे रास्ते पर टांगा चलता रहा। टांगे में तीनों अफराद ने इमाम साहब से कोई बात नहीं की। टांगा चलता रहा और चलते चलते जब काफ़ी देर हो गई तो इमाम साहब को बड़ी घबराहट और परेशानी हुई। इमाम साहब ने उनसे कहा कि लगता है कि आप लोग रास्ता भूल गए हैं, हम काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, अब तक तो हमको आपके गांव पहुंच जाना चाहिए था। अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे अपने गांव का नाम बताएं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, क्योंकि मैं आसपास के तमाम गांवों को जानता हूं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये तो बिल्कुल वीरान है, मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया। वो पहले वाला शख्स बोला, इमाम साहब आप घबराएं नहीं, हमने आपको पहले बताया नहीं कि हम जिन्नात हैं, हमको जिस जगह जाना है वहाँ बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। इमाम साहब को जब पता चला कि वो जिन्नात हैं तो वो बहुत डर गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोग जिन्नात हैं, अगर बताते तो मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं आता। उस जिन ने कहा कि इमाम साहब आप घबराइए मत, मेरे वालिद साहब की वसीयत थी कि आपसे जनाजा पढ़वाया जाए, इसलिए आपको ज़हमत दी, और अगर हम आपको पहले बता देते तो आप आने से इनकार कर देते और मेरे वालिद साहब की वसीयत पूरी ना होती। आप परेशान ना हो, आपकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनकी बात सुनकर इमाम साहब को थोड़ी तसल्ली हुई, मगर अंदर से डर भी रहे थे, क्योंकि पहले कभी इमाम साहब को ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ था। कुछ दूर और चलने के बाद टांगा एक जगह पर रुक गया। इमाम साहब ने देखा कि बहुत सारे अफराद सफ़ेद लिबास में सफ़े बांधे खड़े हैं और उनके आगे एक मैयत रखी है। वो सब इमाम साहब के ही मुंतज़िर थे। इमाम साहब ने इत्मीनान से नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज से फारिग होने के बाद वही पहले वाला जिन इमाम साहब के पास आया और शुक्रिया अदा किया और मज़ीद कहा कि हम सब आपके बहुत एहसान मंद हैं कि आपने मेरे वालिद की ख्वाहिश पूरी की। उसके बाद उस जिन ने हाथ आगे बढ़ाया और इमाम साहब को चंद कोयले हदिया के तौर पर दिए। इमाम साहब ने लेने से मना किया तो उस जिन ने इसरार किया। उसके इसरार के बाद इमाम साहब ने हदिया कबूल कर लिया। आधी रात का वक्त हो चुका था और इमाम साहब चारों तरफ से जिन्नात से ही घिरे हुए थे। ऐसा कुछ इमाम साहब ने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी ऐसा उनकी ज़िंदगी में पहले कभी हुआ था। इससे पहले कि इमाम साहब वापसी का इरादा करते, एकदम चकरा कर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने खुद को अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। करीब ही उनकी अहलिया बैठी पंखा झल रही थी। इमाम साहब ने होश में आकर अहलिया से पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो उनकी अहलिया ने बताया, आप रात से बेहोश हैं और अब आपको होश आया है, रात को चार आदमी आपको घर छोड़कर चले गए थे, ये वही लोग थे जिनके वालिद का जनाजा आप पढ़ाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि गर्मी की वजह से आपको चक्कर आ गया था और तबीयत ख़राब होने की वजह से बेहोश हो गए थे, वो ये कहकर चले गए थे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह तक होश आ जाएगा। इमाम साहब ने अपनी अहलिया को सारा वाकया सुनाया और बताया कि किस तरह उन्होंने जिन्नात का जनाजा पढ़ाया, लेकिन इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि जिन्नात ने वादे के मुताबिक उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और बाहिफाजत घर तक छोड़ गए। इमाम साहब को अचानक उन कोयलों का ख्याल आया जो जिन्नात ने उनको हदिये के तौर पर दिए थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो कोयले मौजूद थे। इमाम साहब ने गौर से देखा तो वो कहीं कहीं से चमक रहे थे। उनकी अहलिया ने पानी से धोए तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि ये बहुत कीमती हीरे थे। इमाम साहब और उनकी अहलिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दीनी कामों की फलाह बहबूद में खतीर रकम खर्च की और गांव में स्कूल भी बनवाया और हस्पताल भी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।